महाबंध पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 6। ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ नमः सिद्धेभ्यः, ॐ श्रुतात्मने नमः। प्रणमो अरिहन्ताणम्, प्रणमो सिद्धाणम्, प्रणमो आयरियाणम्, प्रणमो वज्रायाणम्, प्रणमो लोये सौवसाहूणम्। भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें अभी हम द्वितीय स्थितिबंध अधिकार को देख रहे हैं और तीसरी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पर आ गए। 20 देखो, अभी हमारा ये अध्याच्छेद का प्रकरण चल रहा है और मार्गणाओं में हम अध्याच्छेद यानी उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात है। स्थिति कितनी बनती है उसका काल, उसको अध्याच्छेद कहा। यहाँ पर तो हमने एक इंद्रियों में बात देखी थी, पढ़ी थी, उसी का विशेषार्थ पढ़ेंगे। तो परसों हमने क्या पढ़ा वो भी क्लियर हो जाएगा। एक इंद्रिय जीवों के, जो बात एक इंद्रिय होती है वही बादर एक इंद्रिय में होती है और बादर एक इंद्रिय पर्याप्त में भी होती वही है, क्योंकि एक इंद्रियों में उत्कृष्ट बंध करने वाले वो बादर पर्याप्त जीव ही होते हैं। यानी एक इंद्रिय कॉमन कहो, बादर एक इंद्रिय कहो इन जनरल, या बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कहो, तीनों के लिए यही कथन होगा। क्या है वो? ज्ञान आवरण पर्याप्त उत्कृष्ट करेंगे, क्योंकि उत्कृष्ट भी और जघन्य भी बादर पर्याप्त उनके ही होगा। तो कहते उनके ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध। देखो उनका तो मोहनी का एक सागर होता है, जैसे पंचेंद्रियों में देखते हैं 70 कोड़ा कोड़ी का है, यहाँ एक कोड़ा एक सागर का होता है, वहां जिसको 30 कोड़ा कोड़ी का है वहां है एक सागर का 3 सप्तमांश, जिसको 3/7 कहते हैं, यानी 1×3 सप्तमांश। और फिर उसमें जो जघन्य में जब कोई जो पल्ले का असंख्यात भाग हो उसमें से माइनस करेंगे। तो हम यहाँ उत्कृष्ट की बात चल रही है, ये 3 सप्तमांश सागर, 1×3
सप्तमांश,
बिल्कुल यहाँ तो 3 सप्तमांश होगा, पर जहाँ द्विंद्रिय में 25×3 सप्तमांश करना पड़ेगा, तो वहाँ उसका यहाँ एक ही सागर है, इसलिए 1×3 सप्तमांश का हो तो 30 सप्तमांश सागर ही होगा। हाँ, तो इनका 3/7 सागर का, एक सागर का 3/7 उसी को कहेंगे। मोहनीय का पूरा एक सागर प्रमाण होता है और नाम और गोत्र का एक सागर का 2/7 भाग प्रमाण होता है, यानी 2 सप्तमांश सागर। ये तो उत्कृष्ट स्थिति बंध की बात हो रही है यहाँ पर। अभी यहाँ सबके उत्कृष्ट 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 ही बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रकरण ही उत्कृष्ट स्थितिबंध का है। जघन्य के बाद में सबके लिए जघन्य अलग से बताएंगे। पेज नंबर 20 नीचे का विशेषार्थ हम पढ़ रहे हैं। पर्याप्त एकेंद्रियों के और बादर पर्याप्त एकेंद्रियों के, एक्चुअली पर्याप्त एकेंद्रिय ऐसा भेद नहीं है, एकेंद्रिय में बादर एकेंद्रियों के और बादर पर्याप्त एकेंद्रियों के ऐसा होना चाहिए। पर्याप्त के लिए बदले बादर कहो, बादर एकेंद्रियों के, क्योंकि एकेंद्रियों के दो भेद, बादर एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त। से पर्याप्त शब्द पहले कहो बाद में कहो बात एक ही है, तो यहाँ हमको ऐसा कहना चाहिए बादर एकेंद्रियों के और बादर पर्याप्त एकेंद्रियों के, इन कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध इसी प्रकार है। क्योंकि एक इंद्रियों में उत्कृष्ट बन करने वाले यही जीव हैं। शेष बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त और सूक्ष्म अपर्याप्त एक इंद्रियों के, इसमें से पल्ले का असंख्यातवा भाग कम कर देने पर उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। हमने वो बाप सुप ऐसा जो लिखा था, सूक्ष्म पर्याप्त का भी जो उत्कृष्ट है वो भी पल्ले का असंख्यातवा भाग कम ही होगा। सबके लिए यही कथन। ये जो चार कंटिन्यूस कहेंगे उत्कृष्ट में चार, पहला सबसे ऊपर का उत्कृष्ट कौन सा, बादर पर्याप्तों का, फिर सूक्ष्म पर्याप्त, फिर बादर अपर्याप्त, फिर सूक्ष्म अपर्याप्त। पहले को तो हम पूरा तीन सप्तमांश सागर लिए, बाकी तीन के लिए क्या करना, उसमें से पल्ले का असंख्यातवा भाग कम कर दो। सामान्य कथन तीनों के लिए एक ही है, परंतु एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कम है, ये बात ख्याल में रखना है। उत्कृष्ट स्थिति। अभी आते हैं पेज नंबर 21 पर, 21 पेज। एक इंद्रियों में सात कर्मों के स्थितिबंध का यह बीज पद है। बीज पद ने उसका ये जो हमने देखा उसका ये तो फॉर्मूला बताया, और बीज पद है ना वो उसका नियम बता रहे, उसका कथन जो है इसी बीज पद के अनुसार, यानी ये जो कथन किया कौन सा, तीन सप्तमांश सागर, दो सप्तमांश सागर, पूरा सागर, या उसमें से ये जो अन्य अन्य जीवों के जो कम किए, ऐसा ही कथन पृथ्वी कायिक आदि के, पृथ्वी का एक, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त, इस तरह से उसकी भेद होगी। यह पृथ्वी का एक आदि के बादर सूक्ष्म और इनके पर्याप्त पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट स्थितिबंध जानना चाहिए। ये बीज पद ने एक नियम बता दिया उन्होंने, एक इंद्रियों के लिए भी नियम बता दिया। एक इंद्रियों में किसको एक इंद्रिय कहो, या बादर एक इंद्रिय कहो, या बादर एक इंद्रिय पर्याप्त कहो, उसका उत्कृष्ट है। बाकी सबके लिए उसमें से पल्ले का असंख्यातवा भाग कम किया। ऐसे ही पांच स्थावर कायिकों में ऐसा ही होगा, उसमें भी वो स्थावर कायिक का नाम लेना, पृथ्वी कायिक लिया, बादर पृथ्वी कायिक लिया, बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त लिया, उनके लिए वो उत्कृष्ट तीन सप्तमांश या पूरा सागर या दो सप्तमांश सागर होगा, और बाकी तीन के लिए यानी पृथ्वी कायिक सूक्ष्म के लिए। तो ये जो उसमें बल्ले का असंख्यातवा भाग कम करके बताना अपने अपने उत्कृष्ट से। तीसरी लाइन अब आयु कर्म में बता रहे हैं, आयु कर्म का, क्योंकि आयु कर्म कितना कोई भी सूक्ष्म हो, बादर हो, पर्याप्त हो, अपर्याप्त हो, एक पूर्व कोटि की आयु बांधते हैं। बादरों में अपनी उत्कृष्ट आयु का 1/3 उसकी आबाधा कहनी पड़ेगी, और बाकी जो अंतर्मूर्त वाले भव वाले हैं उसमें तो अंतर्मूर्त कहेंगे, और अपना जो उत्कृष्ट आयु वाले पृथ्वी कायिक में 22,000 का 1/3, तो जो जिसकी आयु है उसमें से उसका 1/3 करना। देखो कहते कि आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध सर्वत्र, यानी इन सभी भेदों के लिए, एक इंद्रियों के भेद हो या ये पांच कायिकों के हो, स्थावर कायिकों के, एक पूर्व कोटि प्रमाण होता है, मात्र आबाधा में अंतर है, क्योंकि सब जीवों की आयु अलग अलग कही है, इसलिए जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयु कही है, ये मैक्सिमम पॉसिबल हमको देना है, उसके अनुसार उसके आयु कर्म का उत्कृष्ट आबाधा काल जानना चाहिए। उसके अनुसार यानी उसके 1/3 करना, वो उसके आबाधा कहलाएगी। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये पहले जो हमने पढ़ा था उसी का ये विशेषार्थ उन्होंने बता दिया। वो कितना कितना होता है तो हमने देखा था ना कि पृथ्वी कायिक में साधिक 7,000 वर्ष होता है, जल कायिक में साधिक 2,000 वर्ष होता है, फिर अग्नि कायिक में एक दिन रात, 3/3 हो ना, फिर वायु कायिक में 1,000 वर्ष, क्योंकि उसकी आयु 3,000 वर्ष की मैक्सिमम हो सकती है। हाँ, वनस्पति कहो या प्रत्येक वनस्पति कहो, 10,000 वर्ष का 1/3, साधिक 3,000, साधिक कहेंगे वहां पर। और सबके कर्म निषेक कितने होते हैं, कर्म स्थिति प्रमाण, पूर्व कोटि प्रमाण उसके कर्म निषेक हो गए। अब आगे बढ़ते, अब द्विंद्रिय आदि की बात करेंगे। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय तथा इन्हीं के पर्याप्त जीवों के, एक इंद्रियों में तो हमने बादर सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त चार चार भेद थे, यहाँ तो हर एक के दो दो ही भेद हो गए, तो पर्याप्तों का उत्कृष्ट होगा। तो इन्हीं के पर्याप्त जीवों के सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध क्रम से, पहले हमने एक सागर का तीन सप्तमांश, पूरा सागर और दो सप्तमांश देखा, अब यहाँ 25 सागर का तीन सप्तमांश, पूरे 25 सागर और 25 सागर का दो सप्तमांश। तो कहते क्रम से 25 द्विइंद्रिय के लिए 25 का करना, तीन इंद्रिय के लिए 50 का करना, चतुरिंद्रिय के लिए 100 सागर का 3/7 भाग, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी सॉरी वेदनी और अंतराय के लिए 7/7 यानी पूरा 25 या 50 या 100 मोहनी के लिए, और 2/7 भाग प्रमाण नाम गोत्र के लिए। यह केवल मूल प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा होती है, क्योंकि ये आबाधा किसकी चल रही है, सात कर्मों की, आयु की नहीं, इसलिए उसमें अंतर्मूर्त प्रमाण, क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर सबके लिए आबाधा कितनी है, अंतर्मूर्त, वो यथायोग्य अंतर्मूर्त का प्रमाण होगा। और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं, सात कर्मों में निषेक के लिए आबाधा को कम करके, बाकी तो कर्म स्थिति माइनस आबाधा उतने उसके कर्म निषेक होते हैं। अब आयु कर्म का, इनके लिए भी उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि की बनती है, तो आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध पूर्व कोटि प्रमाण होता है। अब उसकी आबाधा कैसे काउंट करेंगे, द्विइंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 12 साल होती है, 12 वर्ष, उसका 1/3 4 वर्ष है, साधिक 16 दिन रात, क्योंकि 49 दिन रात की त्रिइंद्रिय की उत्कृष्ट आयु है, और 2 महीना, तो चतुरिंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 6 महीने की है, तो उसमें 2 महीना उत्कृष्ट आबाधा होती है। ये उत्कृष्ट किसी को होगी तभी उसको उत्कृष्ट कहेंगे, विकल्प बहुत होगी ना, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त जघन्य तक सभी विकल्प हो सकते हैं, हमें यहाँ केवल उत्कृष्ट का प्रमाण बताना है। तथा कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते, आयु में ये विशेषता होते, जितनी स्थिति बंदी उतने ही उसके निषेक होते हैं। इन्हीं अपर्याप्त जीवों के, अब ये सभी के अपर्याप्त ने लब्धि अपर्याप्त जीव है, सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध इसी प्रकार होता है। केवल उसमें पल्ले का संख्यात्वा भाग कम करेंगे, इतनी विशेषता है कि वह पल्ले का संख्यात्वा भाग कम होता है, ऊपर जो उत्कृष्ट बताए उसमें से पल्ले का संख्यात्वा भाग घटा देना। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा होती है,
नहीं
ये आबाधा थी या 49 दिन, वो तो उसकी उत्कृष्ट आयु बताई थी।
आयु कर्म के लिए तो 16 दिन उसके 16
वो आबाधा बताई,
आयु कर्म,
आयु कब बनता है उसकी बात है।
ये जो कह रहे हैं इतनी विशेषता है,
देखो ये विशेषता किसी लिए, लब्धि अपर्याप्तों के लिए, लब्धि अपर्याप्तों, अभी फिर से सातों कर्मों की बात हो रही है, अभी आयु कर्म के बाद में बताएं। तो इतनी विशेषता है कि अपर्याप्त जीवों के सात कर्मों का उत्कृष्ट बंध स्थितिबंध इसी प्रकार, इसी प्रकार कितना कहा था ऊपर, 25 50 और 100 अगर का 3/7 7/7 2/7। अभी अपर्याप्तों के लिए क्या करना, 25 सागर का जो तीन सप्तमांश था तो माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, द्विइंद्रिय से संख्यात्व भाग लेते हैं असंगी तक, वो तो आयु के आबाधा की बात हो गई।
अच्छा।
अभी आयु की बात बाद में बताएंगे, पहले सात कर्मों की बात बताएं।
ये सात कर्मों के बारे में,
हाँ सात असंख्यात भाग कम, यानी जो हमने संख्या तो जो 25 सागर उत्कृष्ट उसका बंध देखा था पर्याप्त जीवों का, द्विइंद्रिय पर्याप्त जीव मोहनीय का उत्कृष्ट बंध स्थिति बंध 25 सागर करते मोहनीय का, तो ये द्विंद्रिय अपर्याप्त कितना करेंगे, 25 सागर माइनस पल्ले का संख्यात्व भाग, ये यहाँ कह रहे हैं। हाँ, पूछना जरूर। अब आयु की बात अलग करेंगे, तो पल्ले का संख्यात्व भाग कम, अंतर्मूर्त उनकी भी आबाधा अंतर्मूर्ति है, छोटा होगा फिर भी अंतर्मूर्ति है, और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। ये तो सात कर्मों के बारे में ये कथन हुआ। अब आयु कर्म के लिए, आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों के समान है, यानी उत्कृष्ट स्थितिबंध पूर्व कोटि है, उत्कृष्ट आबाधा अंतर्मूर्त है, और जो कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं ये उनके लिए घटित होगा। पूर्व कोटि स्थिति बंद कर रहे हैं, पर लब्धि अपर्याप्त जीव आयु बांध रहे हैं, वो उनकी अपनी आयु अंतर्मूर्त की है, तो उसका अंतरण अंतर्मूर्ति होगा। ख्याल में आती है, उन्होंने आयु कब बांधी उसकी बात है, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त जीव जो है इतनी छोटी आयु वाले वो भी आयु कब बांधते हैं, अर्लीएस्ट तो टू थर्ड बीत गया, वन थर्ड बाकी है, तब वो शुरू करते हैं आयु का बंध, और वो भी अंतर्मूर्त होता है, और आयु बंध रुकने के बाद भी अंतर्मूर्त बीतने पर मरण होता है, ये ऐसा नियम है।
तो पर्याप्त जो को भी आठ बार आ सकता
हूं। उसमें भी आठ बार हो सकते हैं। हाँ हाँ अपर्याप्त में भी, अभी उसका उसका छोटा छोटा कितना वन थर्ड कितना छोटा, फिर भी वो अंतर्मूर्त का होगा।
और
संक्षेपाद भी वो तो एक्चुअली मिनिमम अवली का असंख्यात भाग भी लिया है। आठों बार नहीं बनती है तो जो अर्ली जब वहाँ बंधेगी उसके बाद भी यानी अंतर्मूर्त, यानी वहाँ तो अवली के असंख्यात भाग को भी अंतर्मूर्त कह दिया, इतना छूट कर फिर मरण होगा, क्योंकि जितने सूक्ष्मता में जाओ उतने और उसके विशेषताएं बताते हैं। हाँ फिर से
लास्ट लाइन जो है, आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध
कितना होगा आप ही बताओ।
पूर्व कोटि
आदि आदि यानी आबाधा कितनी होगी, देखो लब्धि
पंचेंद्रिय तीरंज के तीरंज अपर्याप्त,
पंचेंद्रिय को भूल जाओ, द्विंद्रिय अपर्याप्त की बात हो रही है। द्विंद्रिय अपर्याप्त कितनी आयु बांधते हैं पूर्व कोटि की, यानी मैक्सिमम कब बांधना शुरू करेंगे, वो अपर्याप्त है तो उनकी आयु अपनी अंतर्मूर्त है, वो अर्लीएस्ट कब बांधेंगे, टू थर्ड बीतने पर वन थर्ड बाकी है तब, यानी वो आबादा कितनी होगी, वो अंतर्मूर्त ही होगी, अंतर्मूर्त का वन थर्ड भी अंतर्मूर्त ही कहलाएगा ना। आदि में क्या लेना है, आबादा अंतर्मूर्त, और आदि में क्या लेना है, कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते, आयु के बारे में कोई भी किसी की भी आयु गिनो आप, कोई भी बांधता क्यों ना हो, कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं, ये सबके लिए लागू होता है। यहाँ पंचेंद्रिय तीरंज अपर्याप्त कहा, एकेंद्रिय के समान होता है, एकेंद्रिय अपर्याप्त के समान कहते तो भी वही बात होगी, सूक्ष्म के समान होता है कहते तो भी वही बात थी, क्योंकि लब्धि अपर्याप्त का वन थर्ड लेना है ना, वो आबाधा होती है। समझ में आई बात, फिर से नहीं समझे, देखो फिर से हम जरा
आदि में अपने अंतर्मूर्त,
आदि में क्या क्या लेना, तो आबाधा लेना और कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते वो लेना, जरा वो देना मुझे पीला कपड़ा। हाँ
ऊपर वाला भी बिहेवियर
वो बराबर है। देखो पहले हम आयु के बारे में देखते हैं, ये पूर्व की आयु है किसी जीव की, और यहाँ कितनी आयु बनती है उसकी बात है, यह हम अपर्याप्तों की बात कर रहे हैं, ये अपर्याप्तों की इतनी आयु है उसका, उसका भव इतने अंतर्मूर्त का है, वो आयु कब बांधेगी अर्लीएस्ट, जब वन थर्ड बाकी है आयु, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ उसने आयु बांधना शुरू किया मान लेते ना, यहाँ तक उसकी आयु बांधेगी इस तरह से इतने समय तक, पर बांधी कितनी, पूर्व कोटि की आयु बांधी, उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना किया, आयु का पूर्व कोटि, कब बांधना शुरू किया, तो वन थर्ड अंतर्मूर्त पहले, तो ये उसकी आबाधा कहलाएगी।
अब ये जो आप अंतर्मूर्त बता रहे हैं,
आप जो अंतर्मूर्त बता रहे हैं वो दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय सबकी बात है,
सबकी बात है, अपनी अपनी अपर्याप्तों की,
एक इंद्रिय इसमें नहीं इंक्लूड के, वो तो उसकी बात होगी,
उसकी भी ऐसी होगी, एक इंद्रियों के अपर्याप्त कहेंगे तो यही बात होगी।
हाँ हाँ, यानी एक इंद्रिय से लेकर चतुर इंद्रिय तक के जो, क्यों पंचेंद्रिय तक के
अपर्याप्त,
मैक्सिमम आयु एक पूर्व कोटि की बांध सकते हैं,
अपर्याप्तों की बात,
अपर्याप्त
पूर्व कोटि की बांधते हैं, और कब बांधना शुरू करें, आबाधा मैक्सिमम कितनी होगी, अंतर्मूर्त, ये आबादा है उसकी, क्योंकि उनकी अपनी आयु अंतर्मूर्त है, उसका वनथर्ड भी अंतर्मूर्त है, उसको अबाधा कहेंगे हम। आदि में क्या यह निषेक कितने बनेंगे? जितने पूर्व कोटि के समय है उतने निषेक बनेंगे, इसलिए कहते कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक बनेंगे। ये आयु के बारे में यही कथन होगा। अभी दूसरी बात करेंगे हम, किसी की पूर्व कोटि की आयु है मनुष्य तीर्यंचों की, और उसने 33 सागर वाली वो आयु बांधी, अभी उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंद 33 सागर। अभी आप भी बताइए उत्कृष्ट आबादा कितनी होगी? वंथर्ड पूर्व, अपनी अपनी आयु का वंथर्ड करना। अभी हम द्विंद्रिय पर्याप्तों में देखा, द्विंद्रिय पर्याप्तों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष होती है और वो पूर्व कोटि बांधता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद पूर्व कोटि, उत्कृष्ट आबादा 4 वर्ष, इस 4 वर्ष तीन्द्रिय में 49 दिन उसकी आयु है, तो उसका साधिक 16 वर्ष। वो उसके अपूर्णांकों में बताने की जरूरत नहीं, साधिक 16 में आ गए। चतुर इंद्रिय की उत्कृष्ट आयु 6 महीना, उसका वंथर 2 महीना। आयु के बारे में उत्कृष्ट आबादा इसे गिनी जाती है। तीन बातें बतानी है। नहीं नहीं, आदि में अंतर्मूर्त नहीं, आदि का अर्थ क्या है? नहीं, आप प्रमाण बता रहे आदि में कौन कौन सी बातों को गिनना है।
अच्छा।
देखो उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि यानी उत्कृष्ट स्थितिबंध, उत्कृष्ट आबाधा और कर्म निषेक, तीन बातें बतानी है। हाँ हाँ, ये यानी आदि कहने से वो क्या क्या कौन कौन सी तीन बातें बनानी है, उत्कृष्ट स्थितिबंध, उत्कृष्ट आबाधा और कर्म निषेक। तो कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक ये तो सर्वत्र लागू होता है आयु के लिए, जितनी आयु बनती है उतने ही निषेक बनते हैं। देखो बंधी हुई आयुओं के निषेक नहीं कम होंगे, एक बार बंदी मान लेते, अभी उसमें बाद में दोबारा बनती उसकी चर्चा मत करो। तो बंधी हुई आयु में तो उसमें तो केवल वो घातायुष्क वगैरह होते हैं, तो जैसे श्रेणिक ने 33 सागर की नरकावी बांधी थी, बाद में परिणाम ऐसे हो गए कि निषेक घटकर उसे 84,000 वर्ष के रह गए, परमाणु खिरेंगे नहीं। हाँ, एक्सेप्शन होता है ऐसा, 33 सागर के देवायु बांधने वाले भी 10,000 वर्ष की घातायुष कर सकते हैं, होता है ऐसा, हो सकता है, परंतु बढ़ने के लिए वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम आयु बंद हो जावे, और मान लेते पहले कम बांधी थी बाद में अधिक बांधी, तो वो उत्कृष्ट कहलाएगी। अभी वो प्रकरण यहाँ नहीं, अभी यहाँ तो हमें केवल सिंपली बंद की बात करनी है। अब इसी का विशेषार्थ देखो, द्विंद्रिय और द्विंद्रिय पर्याप्त जीवों के ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 25 सागर का 3/7 भाग प्रमाण होता है। ये समझ में आती है बात? मोनिया का पूरा 25 सागर प्रमाण, उसी को उन्होंने 7/7 कहा, तथा नाम और गोत्र का 25 सागर का 2/7 भाग प्रमाण होता है। हम मराठी में गुजरात में 2 सप्तमोश कहते हैं उसको। हाँ। ये दो सप्तमोश। हाँ, पर वो तो अपने एक शिविर में कौन आए थे, वो लंदन से सूर्याबेन, वो कहते ये सप्तमोश सप्तमोश क्या कर रहे हैं आप, 2 सप्तमोश 3 सप्तमोश, शायद वो तो अंग्रेजी मीडियम सीखे है इसलिए वो तो 2/7 3/7 ऐसा भी यहाँ लिखा है।
हिंदी में बटे बटे करें।
हाँ, बटे करें। ये सप्तमांश वगैरह तो संस्कृत से वो आई बात है ना। हाँ। उसका उतना भाग। हाँ, द्विंद्रिय अपर्याप्त कौन क्या, अभी अपर्याप्त की बात हो रही है, वो उत्कृष्ट कितना बांधेंगे, अपना अपना जो उत्कृष्ट है उसमें से पल्ले का संख्यात वा भाग कम, एकेंद्रिय के लिए हम असंख्यात वा भाग कम कर रहे थे पल्ले का, यहाँ द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय और असंगी के लिए पल्ले का संख्यात वा भाग कम कर देना है। तो द्विंद्रिय अपर्याप्तकों के सर्वत्र, सर्वत्र यानी ज्ञानावरण हो या नामगोत्र हो या कुछ हो, पल्ले का संख्यात वा भाग कम करने पर उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। ये 7 कर्मों की बात है, तीन इंद्रिय पर्याप्त जीवों के ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध 50 सागर का 3/7 भाग प्रमाण होता है, यानी 50 सागर मल्टीप्लाइड बाय 3 सप्तमांश। मोहनीय का पूरा 50 सागर प्रमाण होता है तथा नाम और गोत्र का 50 सागर का 2/7 भाग प्रमाण होता है। अब अपर्याप्तों में क्या कहेंगे हम, इनमें से अपने अपने में से पल्य का संख्यात्वा भाग कम, ये 7 कर्मों के लिए हो रहा है। सर्वत्र पल्य का संख्यात्वा भाग कम करने पर उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। चतुरिंद्रिय और चतुरिंद्रिय पर्याप्तकों के ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी और अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध 100 सागर का 3/7 भाग प्रमाण होता है। मोहनीय का पूरा 100 सागर प्रमाण होता है तथा नाम और गोत्र का 100 सागर का 2/7 भाग प्रमाण होता है। चतुरिंद्रिय अपर्याप्तकों के, ये जो हमने चतुरिंद्रिय का उत्कृष्ट देखा उसमें से सर्वत्र पल्य का संख्यात्वा भाग कम करने पर उत्कृष्ट स्थितिबंध होता है। आबाधा सर्वत्र अंतर्मूर्त प्रमाण है, पर्याप्त की कहो अपर्याप्त की सब में हम अंतर्मूर्त की बात करेंगे। आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध सर्वत्र एक पूर्व कोटि प्रमाण है। ये चतुरिंद्रिय पर्याप्त हो अपर्याप्त हो द्विंद्रिय हो तीन इंद्रिय हो कोई भी, ये मनुष्य 3 इंचों की एक पूर्व कोटि की आयु बांध सकते हैं, मात्र इसकी आबाधा में अंतर है। सब भेदों की उत्कृष्ट आयु अलग अलग कही है। सब भेदों की द्विंद्रिय में 12 वर्ष की उत्कृष्ट आयु थी उसका वंतर, 3 इंद्रिय में 49 दिन की थी उसका वंतर, चतुरिंद्रिय में 6 महीने का वंतर। सभी अपर्याप्तों में तो अंतर्मूर्ति कहेंगे, इसलिए जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयु है उसके अनुसार उसके वंथर लेना है, उसके आयु कर्म का उत्कृष्ट आबाधा काल जानना चाहिए। शेष कथन सुगम है, यानी उसके कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं वो सर्वत्र वही लागू होगा। देखो अभी डायरेक्ट किसमें आए, गति मार्गणा हुई, इंद्रिय मार्गणा हुई, काय मार्गणा हुए, गति इंद्रिय काय। योग में उन्होंने बता दिया था कि वो सभी की बात यहाँ बताई थी, बहुत बड़ा लिस्ट उन्होंने बताई थी। देखो 18 पेज पर नीचे पंचेंद्रिय अपर्याप्तों के अंत कोड़ा कोड़ी थी उसका, नहीं उसके पहले पेज नंबर 17 निकालो। क्योंकि योग मार्गणा में जो है काय योगी कहो तो उसमें भी पंचेंद्रिय है, मनोयोगी में भी पंचेंद्रिय है, वचन योग में भी पंचेंद्रियों की अपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिबंध कहलाएंगे। ख्याल में आती है बात, तो देखो नीचे से इसी प्रकार लिखा ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं लाइन। पहले उन्होंने क्या बताया था, वो 30 कोड़ा कोड़ी और फिर मुनि का 70 कोड़ा कोड़ी, नाम गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी और आयु का इन जनरल बात बताई थी उन्होंने कि 33 सागर बताई थी। तो यही बात कहाँ कहाँ घटित होगी, तो नारकी में, सामान्य 3 इंच में, अभी उसको सबको छोड़ो, हमारी योग मार्गणा है ना। तो देखो नीचे से चौथी लाइन, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, काय योगी इन जनरल, औदारिक काय योगी, वैक्रिक काय योगी लिखा है पर वो 7 कर्मों के बाद घटित होगी, आयु कर्म के लिए पूर्व कोटि कहना पड़ेगा और आबाधा में 6 महीना कहना पड़ेगा। ये बात हो गई, 3 वेद वाले भी हो लिया। तभी क्रम से अगर हम मार्गणाओं की बात करेंगे तो योग मार्गणा पूरी बता दी, वेद में भी 3 वेद वाले बता दिया, अब अपगत वेद का नंबर आया। तो अपगत वेद वाले जीवों के देखो अपगत वेदी कब होते हैं, 9वें गुणस्थान में। तो तेजल आप बताना, अंतर करने के पहले होते के बाद में होते, अपगत वेदी के नहीं, आपको पूछा था, जिसको पूछा है उतना ही बताएंगे। हमने पूछा था कि तेजल आप बताना कि श्रेणी में जब अंतर करता है, अंतर यानी किस में करता है अंतर, चारित्रमण। तो अंतर करने के बाद, क्योंकि अभी तो वेद का उदय था, तो बाद में उसका उपशम करके कहो या क्षय करके अपगत वेदी हो जाते, तो ये हमको सोचना है पहले में पहले। तो जब वो पहले थे तब तो अंतर कोड़ाकोड़ी का बंधन नवे के स्टार्टिंग में भी था। जब अंतर करते हैं उसके बाद में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, सभी कर्मों का स्थिति बंध वो उल्टा पुल्टा कुछ कुछ होते होते आपको क्रमकरण नाम का याद होगा। करण पहले क्या है, बीसीए तीसीए चालीस, उसी प्रपोर्शन में कितना भी कम क्यों ना हो वो तो घटते घटते वो तो स्थिति बंध वो पल्ले वगैरह वो होते होते भी घटते चला जाता है, और बाद में वो संख्या हजार वर्ष तक आके पहुंचता है। पहले क्या था, सबसे ज्यादा कितना था, मोहनी का था, उससे कम कितना वो वेदनी वगैरह का था, और उसके कम नाम गोत्र का था। बाद में ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जब पल्ले के प्रमाण यानी दुरापर कृष्टि जिसका नाम है अभी वो तो सब, हाँ तो पल्ले के संख्यात भाग प्रमाण स्थितिबंध होने लगता है। उसके बाद क्या होता है आखिर के बाद, तो उसके कांडक बड़े बड़े होते हैं। और जो क्या है, सबसे पहले तो नाम कर्म का जघन्य था, फिर ज्ञानावरणादि, फिर मोहनी, तो मोहनी बीच में आ जाता है, फिर मोहनी और नाम के भी छोटा, नाम गोत्र के भी कम हो जाता है, यानी मोहनी का सबसे कम होता है, फिर नाम गोत्र का होता है, फिर ज्ञानावरणादि का होता है, फिर ज्ञानावरणादि भी बीच में आ जाते हैं, नाम गोत्र आखिर, ये बहुत सारे उसमें वे। वो शिविर में हुआ था हमारा, बहुत विस्तार से हुआ था, इधर भी लिया था। यानी इतना ही समझ लो कि जो पहले निकलने वाली है तो मोहनी है, तो उसकी स्थिति सबसे कम हो जाती। अब यहाँ अंतर अपगत वेदी हुआ है, जो वेदों का भी उपशम या क्षय हो चुका है, तो बाय दैट टाइम यानी वो कौन से कर्म के उपशम या क्षय के काल में कौन से कर्म संख्यात हजार वर्ष तक आते, उसके सारे नियम है। तो यहाँ वो संख्यात हजार वर्ष तक कहाँ पहुंचता है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। देखो अपगत वेद वाले जीवों के ज्ञानावरण दर्शन,
हाँ कर्म करने के पहले
देखो, ये जब श्रेणी चढ़ता है तो वहाँ चारित्र मोहनी की कितनी प्रकृतियां, भी अब आप बताओ, 21 प्रकृतियां है, अनंत आनंदी का विसर्जन किया है और श्रेणी चढ़ी है, तो 21 प्रकृतियों में उसने अंतर किया, तो 21 प्रकृतियों में अंतर किया। और यहाँ उदय रूप प्रकृतियां कितनी है बोलो, उदय विच्छित्ति हो गई आठवें में, हाँ बहुत अच्छा, एक वेद और एक कषाय, तो एक वेद उदय रूप है और एक कषाय उदय रूप है, बाकी सब में ये आवली प्रमाण बाकी रखता है, और वो भी एक छोटे आवली प्रमाण, और वो भी उदय रूप तो नहीं है, वो तो आवली में इसी रूप से होकर निकल जाएंगे, यानी अभी उसकी कुछ मायना नहीं रखते। तो अभी इनका जो अंतर्मूर्त प्रमाण है, अब इसमें अपगत वेद होता है ना, क्या है इसका उपशम या क्षय, अभी उस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, वो चला गया, यानी अभी हम मान लेते हैं अभी क्रोध ये बाकी ये तो चला ही गया कब से, ये ऊपर सभी सप्ताह में पड़े हैं। अब जो अपगत वेदी हुआ है ना, उसके वेद का इधर क्षय किया है उपशम किया है, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है।
अभी
उपशम की बात करेंगे, ये सारा उपशमित है, वेदों को भी उपशमित कर दिया। तो जब सबसे पहले उपशम किसका होता है, नपुसक वेद का, तो नपुसक का वेद का उपशम कर रहा है और अभी स्त्री वेद का उपशम करना बाकी, उसमें मोहनीय पहले संख्यात हजार वर्ष तक आ जाता है, संख्यात हजार वर्ष तक कहाँ पहुंचता है, पहले पल्ले का असंख्यातवा भाग था, फिर उसमें भी बड़े बड़े स्थिति बंधापसरण बंध की बात है ना, केवल हमको कांडक घात तो स्थिति में होता है, सत्ता में या बंध में लेना है, बंध भी बहुत छोटा छोटा हो रहा है। तो यहाँ पल्ले के असंख्यात भाग से डायरेक्ट अभी संख्यात हजार वर्ष तक आ जाता है, मोनी का सबसे पहले आता है। फिर स्त्री वेद के उपशमना के काल में ज्ञानावरणादि का आ जाता है। अभी भी नाम गोत्र का पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, आगे चलकर फिर उसका संख्यात्वा भाग हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं देखो, अपगत वेद वाले जीवों के, अभी यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति बंध लेना है अपगत वेद होते ही, क्योंकि जितना आगे बढ़ेगा उतना क्या होगा, और कम हो जाएगा। हाँ, सारे अपगत वेदी ही है। अगर हम पूछेंगे मिनिमम कितना होता है, तो अपगत वेदी में मिनिमम स्थिति बंध कहाँ तक होगा, तो दसवें के अंत तक होगा, उसकी बात नहीं है। अपगत वेद होने पर जितने अंतर्मुत आगे आगे बढ़ेगा उतना उतना कम होगा। हमें उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होगा, अपगत वेद के पहले समय में, भले वो अंतर्मुत तक उतना का उतना होता है, उसके बाद छोड़ो पहले समय से लेकर। हाँ,
आपने वो उत्तर दिया ही नहीं है।
कौन सा उत्तर?
सुनना सुनना, मैं बता रहा हूँ कि अंतरकरण करने के पहले वेद का उदय खत्म होता है या वेद को नष्ट किया जाता है, उपशमित किया जाता है, या बाद में?
आप ही ने उत्तर दिया था।
मैंने उत्तर दिया, लेकिन आपने दिया नहीं, इसलिए
क्योंकि आपको पूछा कि जब ये अंतर किया तो कौन से उदय रूप है।
दो उदय रूप है।
दो उदय रूप है, वो वेद वाला जीव है,
यानी वो अभी नौवे गुण स्थान में उसका उदय चालू है, पहले भाग में।
हाँ, पहला भाग, पहला भाग बहुत बड़ा है।
हाँ ठीक है ना, तो दोनों का उदय है।
हाँ,
यानी ये अंतरकरण करने के बाद में उसका
एक अंतर मुहूर्त तक।
हाँ,
वो वेद वाला है।
वही तो मैं कह रहा था, ये जो बात बतानी थी वो आपने नहीं बताई।
हमने सोचा आपने उत्तर दिया तो
इतनी इन्फॉर्मेशन इतनी दे रहे कि,
क्योंकि आपने उत्तर क्या दिया कि अंतर कर करा, अंतर किया तब वेद का उदय है, यानी वो अपगत वेदी नहीं हुआ है, उसके अंतर्मुर्त के बाद वो अपगत वेदी हो गया।
अभी कैसा अच्छा लगता
है? अच्छा लगता
है। हम बोले और आप बोले भी फर्क है।
यानी अपगत वेद के, अपगत वेद होते ही उसका उत्कृष्ट स्थितिबंध होगा। अपगत वेदी वाले की उत्कृष्ट स्थितिबंध कब? अपगत वेद के पहले समय में।
दशाएं, मतलब दशाएं का उत्कृष्ट बंध।
हाँ, क्योंकि वहां कौन से बंध रहे? ज्ञानावरण भी बंध रहे, अकेला किसा नहीं, ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतरा है, वो सब। मोहनीय भी बंध रहा है, पर मोहनीय का बंध कितना है? संख्यात हजार वर्ष। बाकी तीन घाती का कितना है? संख्यात हजार, पर उससे वो संख्यात गुणा होगा। देखो, अपगत वेद वाले जीवों के ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती, क्योंकि अंतर्मूर्त अंत कोड़ा कोड़ी के नीचे सर्वत्र अंतर्मूर्त कह देना है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। यहाँ जो ज्ञानावरणादि बनते हैं वो निषेक कितने बनेंगे? संख्यात हजार वर्षों के समय जितने उतने बनेंगे। वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध पल्ल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण होता है, क्योंकि अपगत वेद के पहले समय में अभी नाम गोत्र का संख्यात हजार वर्ष तक नहीं आया है, वो आगे चलकर आएगा। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थितिबंध संख्यात सौ वर्ष प्रमाण होता है, वो संख्यात हजार कहा या संख्यात सौ कहा? संख्यात सौ कहने से भी हजारों में हो सकता है, परंतु वो तो बहुत बड़ी संख्या है, यानी इससे संख्यात गुणा वाला ज्ञानावरण आदि का होता है, और नाम गोत्र का असंख्यात गुणा होता है। हमेशा हमने नाम गोत्र को बीस बीसीय कहा था, ज्ञानावरण आदि को तीसीय कहा था, और ये मोहनीय वो सत्तरीय कहो। यहाँ मोहनीय का भी संख्यात सौ वर्ष, ज्ञानावरणादि का संख्यात हजार वर्ष, और इसका पल्ल का असंख्यात भाग, यानी असंख्यात गुणा बड़ा है। हाँ, अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होते, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते। मेरा प्रश्न है, आयु का क्या होगा? तेजल,
आयु का बंध क्या?
हाँ, आयु के बंध की बात कर,
आयु बंध होती है?
हाँ, वही तो पूछो। तो सातवें गुण स्थान में होगी कि नहीं? जिसने छठे में चालू किया है वो सातवें तक आ जाता है। हाँ देखो, अभी सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों के सात कर्मों का बंध होगा कि नहीं होगा? छह का बंध होगा। मोहनीय भी रुक गया नवे में, आयु तो छठे सातवें तक ही बनती थी है? तो छह कर्मों की बात होगी यहाँ पर। सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों के तीन कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध मूर्त पृथक्व प्रमाण होता है। मूर्त पृथक्व क्यों कहा? तीन कर्म कौन से? ज्ञानावरण दर्शन अंतराय, बारह मूर्त है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा होती है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। बारह मुहूर्त। देखो, वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध मास पृथक प्रमाण होता है, क्योंकि देखो ये सूक्ष्म सांप्राय में हमेशा जो हम गिनते हैं एक्चुअली यहाँ बारह मुहूर्त नहीं लेना, ये जघन्य होती है। मोर देन बारह मुहूर्त। एक सेकंड, ये शुरुआत की बात है,
ये पहले समय
में मुहूर्त पृथक्त्व लिखा है, यानी मोर देन बारह मुहूर्त ऐसा मैंने लिखा था, क्योंकि लास्ट में अनेक मुहूर्त हो गए ना। जघन्य स्थितिबंध बारह मुहूर्त का है, अब शुरुआत में तो ज्यादा होगा, अनेक मुहूर्त होंगे, हम कह ना सैकड़ों मुहूर्त भी ले सकते हैं। बारह मुहूर्त नहीं, वो मोर देन बारह मुहूर्त, वो ज्यादा, यानी अनेक मुहूर्त लिया ना, मुहूर्त पृथक को ऐसा ही रखने दो।
उत्कृष्ट पहले समय में हो जाएगा,
पहले समय में उत्कृष्ट होगा, क्योंकि दसवें गुणस्थान का जो काल है उसमें भी स्थितिबंध घटते चला जाएगा, और जघन्य की बात है वो बारह मुहूर्त रह जाएगी अंतिम समय। तो तीन कर्मों का मुहूर्त पृथक होता है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा होती है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध मास पृथक्व प्रमाण होता है। देखो ये कैसे हुआ, उल्टा पुल्टा हुआ ना। अभी सबसे जघन्य मोहनीय का पहले हुआ था, जब हमने क्रमकरण देखा था उसमें क्या हुआ था, मोहनीय सबसे छोटा स्थितिबंध, उससे ज्यादा तीन घाती कर्मों का, उससे ज्यादा हाँ, और वेदनी का उससे थोड़ा अधिक, इस तरह से। अभी तीनों को एक साथ लिया है, अब इन तीनों को कितना लिया, वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध मास पृथक्व प्रमाण होता है, वो मुहूर्त पृथक्व और ये मास पृथक्व। अंत पृथक्व कहने से अभी उन्होंने उसको स्पेसिफिक नहीं बताया। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा होती है और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। विशेषार्थ, यहाँ जो अपगत वेदी जीव के और सूक्ष्म सांप्राय संयत जीव के कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध बतलाया है, वह उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीव के, बहुत अच्छा, उतरने वाले के अंतम में होगा, है ना, उतरने वाले के अंतिम, हमने पहले समय में लिया था अपगत वेदी के, पर अपगत वेदी के उतरने वाले का अंतिम समय, उतरने वाला स्थितिबंध डबल होता है।
आपने जो पहला समय बताया,
हाँ,
वो उतरने वाले का आखिर का समय होगा ना?
होगा, पर पहला समय चढ़ने वाले का है, उसका स्थितिबंध से उतरने वाले के अंतिम समय में डबल होता है। हाँ, यानी वो उतरने वाले के अंतिम समय में लेना, बात सही है। और चढ़ने वाले की भी बात करेंगे तो क्षपक वाले की कम होगा, उपशम वाले की उससे डबल होगा। देखो हम जघन्य की बात करेंगे, जघन्य तो वेदिनी का बारह मुहूर्त मालूम है ना सबको, जघन्य स्थिति बंद हम जो बारह मुहूर्त कहते हैं, तो बारह मुहूर्त किसका है, क्षपक का है। उपशम के चढ़ने वाले का कितना होगा, 24 और उतरने वाले का 48, डबल का डबल, इस तरह। इसलिए उपशम श्रेणी उतरने वाले के उसी पॉइंट पर मैक्सिमम स्थिति बंद होगा, ये कहना चाहते हैं। बंद घटता चला जाता है, वो तो बराबर है। श्रेणी उतरने वाले के जहाँ जो हम उत्कृष्ट कब होगा, जो जितना नीचे हो उसका बंद करेंगे, उसका उत्कृष्ट करेंगे। अपगत वेदी का उत्कृष्ट कब होगा, उतरने वाले का, अपगत वेदी का अंतिम समय, जब वेद का उदय होने वाला है नेक्स्ट समय में, उसके पूर्व का समय, क्योंकि हमारी मार्गणा अपगत वेदी की अंतिम समय की, ये भूल गए थे, है ना। तो कहते वह उपशम श्रेणी से उतरने वाले जीव के सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में और अपगत वेद के अंतिम समय में प्राप्त होता है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहनीय का और श्रेणी में आयु कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि मोहनीय का बंध 90 तक है, आयु का बंध तो 7 तक है। इसलिए सूक्ष्म सांप्राय संयत के मोहनीय और आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का और अपगत वेदी जीव के मात्र आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का निर्देश नहीं किया, उसका कथन ही नहीं किया, वो बनती नहीं, उसकी बात ही नहीं उठाई, शेष कथन सुगम है। ये वेद मार्गना हुई, गति इंद्रिय का योग वेद। अब कषाय में बताया था कि चारों कषायों का उत्कृष्ट स्थिति बंध जो पंचेंद्रिय जीव करते वही वो उसका है, 30 कोड़ाकोड़ी, 70 कोड़ाकोड़ी, 20 कोड़ाकोड़ी वगैरह वगैरह। योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन। ज्ञान में हमने देखा था मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी विभंग ज्ञानी को वो उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा, वो तो उसमें बात आई थी, और वो कितना होता है तो ओक के समान होता है। योग वेद कषाय ज्ञान होगा, ज्ञान संयम, संयम में असंयम में उत्कृष्ट होता है, बाकी संयता संयत वगैरह सबको अंत कोड़ा कोड़ी वाले उसको एक ग्रुप अलग बनाया था। दर्शन में चक्षु दोनों को उत्कृष्ट होता है, क्योंकि पंचेंद्रियों का चक्षु दर्शन भी तो है। दर्शन संयम दर्शन लेशा, लेशा में कृष्ण लेशा वाले को हमने देखा था, वैसे पांचों लेशा वालों को उत्कृष्ट होगा। शुक्ल लेशा वालों को अंतक कोड़ा कोड़ी होता है उत्कृष्ट बंधन, याद है ना ये। योग वेद कषाय ध्यान संयम दर्शन लेशा भव्य भव्य अभव्य दोनों को ही उत्कृष्ट बंध करना। सम्यक्त्व में मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट होता है, सासाधन से लेकर वो अंत कोड़ा कोड़ी होता है। दर्शन संयम भव्य सम्यक्त्व संगी, अभी संगी मार्गना, संगी में उत्कृष्ट होता है तो बता ही दिया था, अब असंगी के लिए उत्कृष्ट, असंगी के लिए उत्कृष्ट कौन, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव करेगा, अभी इसको पढ़ेंगे हम। बीच वाली सभी मार्गणाएं उन्होंने कवर कर दी थी। देखो असंगी जीवों में 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सागर का 3/7 भाग, क्योंकि असंगी पंचेंद्रिय जीव इसका उत्कृष्ट बंध करेंगे पर्याप्त, 7/7 भाग मोहनी के लिए और 2/7 भाग नाम कर्म और गोत्र कर्म के लिए है। अंतर्मूर्त प्रमाण आबादा होती है, क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी के नीचे सर्वत्र अंतर्मूर्त कहेंगे हम, और आबादा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते हैं। तो प्रेरणा बिन आयु कर्म कितनी बंधेगी यहाँ पर, असंगी जीवन का आयु कर्म कितना बांधेगी मैक्सिमम। हाँ बोलो अभी, असंगी जीव मरकर देव में जाते हैं, असंगी जीव मरकर पहले नरक में भी जा सकते हैं, कितनी आयु बांध के जा सकते हैं मैक्सिमम, पल्ले का असंख्यात्वा भाग। हमने ये भी देखा था कि वो ज्योतिषी में नहीं जा सकते, क्योंकि ज्योतिषी की मिनिमम आयु पल्ले का 8 भाग है, जैसे भवनवासी में जा सकते हैं, व्यंतर में जा सकते हैं और नारकी में जा सकते हैं, ऊपर के कुछ पाथड़ों में जाएंगे, असंख्यात्वा भाग आयु बांध सकते हैं। हाँ देखो यहाँ लिखे आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध पेज नंबर 23 पर पहली लाइन, पल्ले के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होता है, बात आई ना यहाँ पर। पूर्व कोटि के त्रिभाग प्रमाण आबाधा होती है, क्योंकि असंगी की उत्कृष्ट आयु अपनी आयु पूर्व कोटि है, और वो कब आयु का बंद कर सकते हैं, वन थर्ड पूर्व कोटि बाकी है तब। ये समझ में आई बात यहाँ पर असंगी जीवों की। और कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक होते, कर्म स्थिति
असंगी पूर्व कोटि की आयु वाला है
हाँ,
और वो पर्य का असंग
भाग आयु बांध सकता है किसकी, तो नारकी की और देव की। यानी असंगी पंचेंद्रिय जीव, असंगी कहने से असंगी पंचेंद्रिय जीव इतनी बंद करेगा। विशेषार्थ, असंगी जीवों के मोनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध 1000 सागर प्रमाण, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी अंतराय का 1000 सागर का 3/7 भाग प्रमाण, तथा नाम और गोत्र का 1000 सागर का 2/7 भाग प्रमाण होता है। ये समझ में आवे ऐसी बात है। असंगी जीव मरकर प्रथम नरक में और भवन त्रिक में भी उत्पन्न होते, यहाँ त्रिक कहा है पर भवनवासी और व्यंतर में, इसलिए इस दृष्टि से इनके आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण होता है, शेष कथन सुगम है। ये ज्योतिषों में नहीं जाते क्योंकि उसकी जगन्य आयु पल्ल के 8वें भाग प्रमाण है, ये विशेषता है इसमें। अरे हाँ बांधते, पर वो कम है ना उत्कृष्ट। हाँ अरे पूर्व कोटि की क्या अंतर्मूर्ति भी बांधेंगे, उत्कृष्ट कितनी बांध सकते, तो ये मैक्सिमम है। इस प्रकार उत्कृष्ट अध्याचे समाप्त हुआ, यानी कोई जीव अलग अलग पर्याय वाले, यहाँ से हम मार्गणाओं में भी देखा तो उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध 7 कर्मों का और आयु कर्म का कहाँ कितना होता है, आबाधा कितनी होती है और कर्म निषेक कितने होते हैं, उसकी चर्चा हमने की। अब कहते हैं जघन्य का प्रकरण है।
ये जो पल्य का 8वां भाग है वो प्रमाण छोटा है कि बड़ा है, पल्य क्या
देखो आप ही बताना कि असंख्यात के लिए हम 16 समझते हैं, और अच्छा अच्छा 8 के लिए 8 ही रखते हैं
हाँ।
और असंख्यात का प्रमाण हम 800 लेते हैं, समझो। तो अभी हमारी मूल संख्या हम 8000 लेते हैं, 8000 ने पल्ले के लिए 8000 लिया, तो पल्ले का 8वां भाग, 8000 का 8वां भाग कितना हुआ 1000, और हमने असंख्यात के लिए 800 लिया था, 8000 का 800वां भाग कितना हुआ, 8-8 गए, 2-2 जीरो गए, 100, तो कौन सा बड़ा हुआ 8वां। भागाकार में जो संख्या बड़ी होगी तो उसका फाइनल रिजल्ट लब्ध जो होता है वो छोटा होता है, यहाँ संख्यात से भाग दिया तो बहुत हाँ। अभी जघन्य की बात हम पढ़ेंगे यहाँ पर हाँ। ये मूल प्रकृतियों का जघन्य स्थिति बंद है, संगी पंचेंद्रियों में हमने वो रेगुलर लिए थे मिथ्या दृष्टि वगैरह, अब यहाँ संयतों में मिनिमम होगा, जो 10वें गुण स्थान में लास्ट में क्षपक के होगा वो मिनिमम होगा ओग में, अदरवाइज अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो एक इंद्रियों का जो मिनिमम होगा, क्योंकि सागर का कुछ है हाँ। देखो देखो आपका प्रश्न है स्थितिबंध किस में कम होगा, प्रशस्त समय के अप्रशस्त समय, वो बात हम उत्तर प्रकृति में देखेंगे हाँ, वो तो हम उत्तर प्रकृति में देखेंगे, परंतु स्थितिबंध जो है मैक्सिमम संक्लेश से होता है और मिनिमम विशुद्धि से होता है, भले वो प्रकृति प्रशस्त भी क्यों ना हो, तीर्थंकर प्रकृति प्रशस्त के अप्रशस्त, प्रशस्त उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध संकलेश से होगा कि विशुद्धि में होगा, यानी तीर्थंकर प्रकृति का मैक्सिमम स्थिति बंध 8वें गुणस्थान में होगा कि 4थे में होगा, 4थे में भी किसको उत्कृष्ट होगा, अभी वो सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व में जाने वाला है जो नरकायु बांधने वाला, और नरक में जाने वाला है दूसरे तीसरे, वहां उसका उत्कृष्ट होगा, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो। स्थिति बंध में तो बहुत आसान है सोचना, जो अनुभाग बंद की बात है बहुत सोचना पड़ता है। समझ नहीं आती है ना, क्योंकि विशुद्धि ज्यादा होगी, स्थिति कम बंधेगी और अनुभाग मैक्सिमम बंधेगा। जैसे साता वेदनी का जघन्य स्थिति बंध कहाँ होता है, वो स्थिति बंध नहीं कहलाता। वो ईर्यापथाश्रव ईर्यापद बंध है, उसको हम स्थिति बंध नहीं कहते, स्थिति बंध दसवें तक कहेंगे, क्योंकि स्थिति बंध और अनुभाग बंध दसवें तक है। कितना होता है, हाँ, उसका उत्कृष्ट अनुभाग कहाँ बंधेगा, हाँ वही दसवें में बंधेगा, कि वहां स्थिति जघन्य है, अनुभाग उत्कृष्ट है, और जहां संकलेश ज्यादा है, संकलेश ज्यादा है तो साता बंधेगी नहीं, असाता ही बंधेगी। उसका अनुभाग भी उत्कृष्ट होगा, स्थिति भी। अभी वो तो अनुभाग का प्रकरण को अभी दो पुस्तकें और बाकी है। अभी तो मूल प्रकृति में बहुत आसान है। देखो अब जघन्य का प्रकरण, हाँ, क्योंकि मूल प्रकृति कौन सी है, वो छह प्रकृति बनती है, कहाँ बनती है, लास्ट में दसवें में, उसका जघन्य कहाँ होगा, दसवें में होगा, शपक को, शपक दसवें के अंत में होगा। अब मोहिनी का कब तक होता है, नवे में, उसका जघन्य कब होगा, नवे के अंत में होगा। कितना होगा, अंतर्मूर्त होगा, समझ में आती है बात, वो अलग अलग कितना होता है वो बताएंगे, ये अध्याचित का प्रक्रम में बताएंगे। देखो देखो अभी यहाँ ओग और आदेश दो प्रकार से निर्देश है ना जघन्य में, ओग से भी कथन होगा और मार्गणाओं में भी कथन होगा। तो ओग से यानी जिस किसी के होता है उसको हम ओग से कहेंगे, जो हमने दसवें की बात की थी वो ओग से, वहीं पर उसका जघन्य स्थिति बंध होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म का जघन्य स्थिति बंध कितना होता है, तो अंतर्मूर्त प्रमाण होता है। कहाँ होगा, तो मोहनीय का तो नौवे में होगा और बाकी तीन का तो दसवें में होगा। अंतर्मूर्त प्रमाण आबाधा है, वहां पर भी आबाधा होगी अंतर्मूर्त की, और स्थिति बंध भी अंतर्मूर्त का होगा। और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध बारह मूर्त है। अब यहाँ साता ही बन रहे, पर हमारा ये तो मूल प्रकृति का कथन है, जो बन रही वो हमसे कोई मतलब नहीं है। तो वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंध बारह मूर्त है, यानी क्षपक के दसवें के अंत में हो रहा है। वो तो स्वामित्व में बात आएगी सब। अंतर्मूर्त आबाधा है, और आबाधा से न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। तो हमने अभी देखा दसवें के अंत में बारह मूर्त, उसका जघन्य स्थिति बंध कितना है, बारह मूर्त का यहाँ बनने वाले, और तब उसका अनुभाग मैक्सिमम बंधा था। ये बारह मूर्त में तो खलास होने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद तो बंध नहीं है, तो बंध नहीं तो उत्कर्षण का सवाल नहीं है, तो ये तो है वो तो निकल जाएंगे। और कोई पूर्व कोटि के वो आठवें वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उस यहाँ है, तो अभी इतना उसका तेरहवें गुणस्थान का काल बाकी है, तो जो मैक्सिमम अनुभाग वाले वो तो निकल गए, तो बाद में उसका अनुभाग कम होकर उदय में आएगा कि नहीं आएगा केवली को, मेरा प्रश्न समझ में आया। तो वहाँ जो अभी बारह मूर्त में वो तो निकल जाने वाले, हाँ, तो बाद में उसका कम होगी ना अनुभाग, कम होकर उदय में आएगा, क्या कहते आप, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अनुभाग तो बंधा हुआ जितना बारह मुहूर्त में चला गया। हाँ बोलो अभी अश्विन भाई। अरे उसमें बता, हम उदय की बात कर रहे हैं,
क्योंकि इरियापथा से जो एक समय के लिए बनता है उसमें अनुभाग का बंद,
उसमें नहीं अनुभाग, वही तो कह रहे हैं।
नहीं नहीं उसका ये कम नहीं होगा,
क्यों नहीं कम होगा, वो तो निकल गए ना बारह मुहूर्त में,
वो बारह मुहूर्त में निकल गए, उसके पश्चात तो अनुभाग बनता ही नहीं है।
अरे बनता नहीं, पर पहला कम बंधा था ना, वो उदय में आएगा ना,
वो तो बारह मुहूर्त में निकल गए ना।
अरे बारह मुहूर्त के निषेक बारह मुहूर्त में नहीं निकलेंगे तो क्या निषेक ऊपर चढ़ेंगे?
नहीं नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ, बारह मुहूर्त में सब निषेक निकल गए।
कौन से अभी लास्ट में बंधे हुए?
लास्ट में बंधे,
पर वो जो चौदहवें के अंत समय तक जो उदय है वो पहले का बंधा हुआ है, वही अनुभाग रूप से बंधा था।
चालू
है ना? हाँ? तो उदय तो चौदहवें के अंत तक है, तो पहले ज्यादा उदय होगा, 12 मुहूर्तों तक बहुत मैक्सिमम अनुभाग वाला उदय होगा, और बाद में
अनुभाग के उदय के लिए हम लोग देखते हैं उसको,
क्या देखते हैं,
जो
हमें उत्तर चाहिए
अनुभाग का उदय कितना भी हो जीव को फर्क नहीं पड़ता है,
उत्कर्षण अपकर्षण जो कुछ हो, स्थिति में हो या अनुभाग में,
बंद की अपेक्षा होता है,
उसको बंद की अपेक्षा है। अब जो 12वें के अंत में जो उत्कृष्ट अनुभाग बन रहा है, उस समय सत्ता में कितना कर्म पड़ा है, पल्ले के असंख्यात विभाग इतना पड़ा है, वो स्थिति की अपेक्षा पड़ा है। स्थिति में तो कोई बढ़ोतरी होने के सवाल नहीं है, स्थिति तो अभी तो बनती मिनिमम है, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, पर वहां का जो सत्ता में अनुभाग पड़ा था उसका उत्कर्षण होकर वो मैक्सिमम अनुभाग बनता है। कब होता है? संक्रमित होता है जब 12 मुहूर्त वाली स्थिति बन रही है, तो सत्ता में जो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति पड़ी है उनका सबका अनुभाग मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि बंधा हुआ अनुभाग मैक्सिमम है तो वो सत्ता का अनुभाग भी बढ़ जाता है। अनुभाग में भी उत्कर्षण के लिए नए बंध की अपेक्षा है। जब बंध अधिक अनुभाग युक्त होता है तो सत्ता का अनुभाग भी बढ़ता है।
तो ये 12 मुहूर्त खत्म हो गया अनुभाग,
पर ऊपर के अनुभाग उत्कृष्ट हो चुके थे, तो फिर उदय वो उत्कृष्ट अनुभाग का होगा, कि सत्ता में उत्कृष्ट अनुभाग हो गया है। सत्ता के कम अनुभाग वाले उत्कृष्ट अनुभाग, हमारी चर्चा ये चल रही थी कि जघन्य स्थिति बंध का प्रकरण शुरू है, वेदनीय का जघन्य स्थिति बंध 12 मुहूर्त का है, वहां अनुभाग यहां साता वेदनीय का उत्कृष्ट बंधेगा, तो उत्कृष्ट स्थिति वाले कितने, कितनी स्थिति बंधी उसमें 12 मुहूर्त की, तो 12 मुहूर्त में वो निषेक गल जाएंगे, तो केवली तो कितने करोड़ों वर्षों तक रहेंगे, तो ये जो उनकी जो बाद में जो उदय आएगा साता वेदनीय का, वो तो कम होकर उदय में आएगा, क्योंकि ये जो अधिक अनुभाग वाले परमाणु तो फिर गए, तो क्या उनका अनुभाग का उदय अभी घटकर उदय में आएगा, क्या होगा? क्योंकि पूर्व का पड़ा है वही तो उदय में, पहले निषेक जो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण पड़े हैं स्थिति वाले, ये नए बंध वाले तो 12 मुहूर्त के ही निषेक बंधे, वो नए बंधे हुए परमाणु तो कब के चले जाएंगे, 12 मुहूर्त में निकल जाएंगे,
वो
तो उत्कृष्ट बंधा हुआ, स्थिति जगन्य बंधी अनुभाग मैक्सिमम बंधा है, तो 12 मुहूर्त में चले जाएंगे, तो 12 मुहूर्त के बाद जो पुराने कर्मों का अनुभाग जो जगन्य था, क्या वो अभी कम होकर उदय में आएगा, क्या होगा, क्यों, यही हमारी चर्चा चल रही
है।
जब अनुभाग का बंद हो रहा है तो सत्ता में पड़े हुए अनुभाग भी उतने अनुभाग वाले हो जाते हैं, उसमें उत्कर्षण होता है, अनुभाग का उत्कर्षण हो जाता है, हाँ वहां तक सबका अनुभाग उत्कृष्ट हो जाता है,
अनुभाग संक्रमण होता है,
अनुभाग में उत्कर्षण हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। आपने शायद ऐसा सोचा होगा, कभी सुना भी होगा कि पहले पाप बांधा है को या कम पुण्य बांधा है, और अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, अन्य बातें कर रहे, तो पहला जो हीन पुण्य बांधा है वो भी अधिक होकर अनुभाग पड़ा हो जाता है, सत्ता में पड़ा हुआ कम अनुभाग भी बढ़ जाएगा प्रशस्त कर्मों का। उल्टा देखना है तो पहले तो कम पाप किया था अब ऐसा तीव्र पाप करते हैं तो पहले आशाता का अनुभाग भी बढ़ जाएगा, पूरा का पूरा नहीं, उसमें अधिक है तो उदय रूप अधिक हो जाएगा ना। अभी वो अनुभाग की चर्चा बाद में, अभी हमारा जघन्य स्थिति का प्रकरण चल रहा है, बीच में इन्होंने अनुभाग की बात उठाई थी इसलिए, क्योंकि 10वें के अंत समय में एक अंतर मुहूर्त तक उसका जघन्य स्थिति बंद हो रहा है, और अनुभाग भी उसमें उत्कृष्ट बन रहा है, वो तो प्रति समय उत्कृष्ट होता है, स्थिति बंद तो अंतर मुहूर्त तक उतना का उतना होता है, पर अनुभाग श्रेणी में अनुभाग प्रति समय अनंत गुना बढ़ता है, तो मैक्सिमम 10वें के अंतिम समय में जो वहां अनुभाग बंधा बंधने वाले का, उसकी स्थिति तो 12 मुहूर्त की पड़ी, पर उस समय सत्ता में जितने पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण निषेक पड़े थे स्थिति की अपेक्षा, उनमें जो अनंतानंद परमाणु वो सारे उत्कृष्ट अनुभाग रूप से संक्रमित हुए। इसे बारह मुहूर्त के बाद भी वो उत्कृष्ट अनुभव का ही उदय रहेगा। तब तक वो तो अभी अभी जब तक लास्ट चौदहवीं के अंत समय तक
इतने काल तक चलेगा।
हाँ
पर हमने इसे भी देखा है ना कि अशाता का भी उदय भी होता है।
उदय होता है
साता अशाता दोनों का तेरहवें तक होता है ना उदय
चौदहवें तक
होता है। तो अशाता का उदय होता है पर वो जीव को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वहाँ पे
जीव को तो फर्क पड़ता है। देखो अशाता का उदय तो केवली को क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं है क्योंकि साता असाता किस में काम है तो इंद्रिय जन्य सुख दुख में जो उसके उसमें निमित्त होते हैं और वो तो मोहनीय हो तो उसके बाद
तो चला गया
मोहनीय के उदय में उसका जो सुख दुख रूप रो जीव वैसा अनुभव
हो रहा था वो निकल गया।
अरे उपसर्ग के लिए पर उपसर्ग केवली केवली होने पर उपसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग केवली पहले उपसर्ग था और उसकी अवस्था में उसको उपसर्ग केवली कहते हैं। केवल ज्ञान होने पर किसी को भी उपसर्ग नहीं रहता है। हाँ बारहवीं के बाद केवल ज्ञान की महिमा है वो अतिशय है उसका ज्ञान में आते हैं। और हमें तो लगता है कि उपसर्ग हो रहे तो दुखी है। अरे उस काल में भी वो दुखी नहीं है उपसर्ग के काल
दुखी है।
अरे श्रेणी क्या वो मुनिराज जो है उपसर्ग की अवस्था में कहाँ उनके दुख वो तो अपने अनुभव में लीन होते हैं। उसका तो प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करने वाले होते हैं। और जो यहाँ शरीर से आत्मबुद्धि है और संयोगों से सुख दुख मानते हैं अरे बिचारे कितना दुख कौन कह रहे
हैं तो
मुझे याद है हम देवलगांव राजा में गए थे वहाँ एक बहन ने चिट्ठी लिखी है भाई जी पहले वाक्य का शुरुआत है बिचारे मुनिराज कौन मुनिराजों को बिचारे कह रहे कि उनको श्रेणी उपशम श्रेणी से गिरना पड़ता है तो उन्होंने उपशम श्रेणी क्यों चढ़ी सहन करते ये सहन करने के पीछे का हमारा क्या है दुख सहन करना होता है क्योंकि हमने भी उपवास करते करते ये वगैरह जो ऑर्डिनरी क्या कहते हैं भूख सहन करते हैं भूख सहन करना वो कुछ हाँ ऐसी है ना ये सहन करो वो सहन करो वो सहन अरे सहन करने में तो दुख की अनुभूति हो रही है और यहाँ तो यहाँ तो हाँ जय है ना वो हाँ सहन करते हैं उसका लक्ष्य नहीं है वो क्योंकि जो आत्मा को मैं ज्ञाता दृष्टा हुई उसने मान लिया है तो ज्ञान के गेय रूप से चल रहा है वहाँ पर। जैसे हम दर्पण में कोई प्रतिबिंब देखते हैं फूल का प्रतिबिंब हो या कोई गंदगी का विष्ठा का प्रतिबिंब हो तो उसमें क्या हो रहा है वो तो प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब है परंतु यहाँ भी ज्ञान के गेय रूप से है वो जानेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है। उपसर्ग काल में उसका ज्ञान हो रहा है वो चल रही है ऐसी अवस्था शरीर की भी हो रही है वो जाता है नहीं। श्रीमद ने भी कहा ना वो तो वांग सिंह आकर खा जावे तो इतना उससे डिटैचमेंट है कि उसमें भी वो ये मेरा है या मैं हूँ मुझे खा रहा है ऐसी बात ही नहीं वहाँ पर। वो तो अपना अनुभव एक बार हो गया जैसे वस्त्र कहीं अटक गया है तो फिर खिले में तो कोई ऐसा होता है कि इतना अरे हाय 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 अब उसमें अरे तू वस्त्र तो फटा है तुझे तो कुछ नहीं। बच्चे को होता है ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ होता है रीना मोना एक बार स्कूल जा रही थी और ऐसी लंबी छतरी थी उनके पास तो छतरी नीचे गिर गई और क्या हुआ वो कार के पीछे वो उसमें वो अटक गई और वो छतरी चली गई तो रोते रोते घर में आ गए तो पहले हम क्या तुझे कुछ नहीं हुआ ना अरे वो तो गई ऐसे वस्त्र भी फट जाए कुछ भी तुझे कुछ नहीं हुआ ना ऐसे हम अपने पर सोचेंगे मैं तो आत्मा हूँ जानन देखन वाला हूँ शरीर की अवस्था हुई जो कुछ हुई तुझे कुछ नहीं हुआ ना हम अपने से पूछे कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर जब तक उसमें आत्मबुद्धि है तब तक तो वो दुख होता है तो फिर अरे अरे असाता अरे असाता कुछ नहीं कर रही है ये तेरी तो मिथ्या मान्यता है वो दुख दे रहा है और आरोप किस पर आता है असाता पर। नेचुरल है ना क्योंकि कर्म का उदय उदय होकर खिर रहे उसमें क्या है तूने जो जैसे भाव किए थे वैसे कर्म बंधे और वो खिर रहे हैं अपन खिर रहे हैं तो उसमें यार हाय 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 मैं दुखी है, मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति है, क्या करो क्या करो।
कभी कभी मिथ्या दृष्टि उपवास करता है तो उसको पुण्य मिलता है कि पाप मिलता है? पाप मिलता
है। अरे मिथ्या तो का इतना बड़ा पाप जमा कर रहा है और इतना सब पुण्य कर रहा है,
जितना वो दुखी हो रहा है उतना पाप का।
और ये पुण्य पाप में भेद मान रहा है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, इतना तो अच्छा है ना, इतना तो अच्छा है ना। ये शाम को यही बात चल रही है, पुण्य और पाप में जो भेद मानता है वो तो मिथ्या दृष्टि है।
पुण्य अच्छा
नरक निगोद में जाता है,
मिथ्या दृष्टि है।
अच्छा मानते हैं ना, दोनों में डिफरेंस मानता है ना। हाँ,
दोनों पाप।
हाँ,
पाप खराब है ना, पुण्य उससे थोड़ा अच्छा है।
वो अपेक्षावश, वो अपेक्षा छूट जाए। दोनों तो सामान्य रीति से देखो, दोनों को ही सामान्य रीति से देखो, दोनों ही कर्म ही है और बंध ही रहे हैं। और बंध का भाव जो है वो दुखरूप भाव है। हाँ, भले उसके हम किसकी अपेक्षा देखते हैं, अरे उसका संयोग तो अच्छा मिलेगा, पुण्य तो करो। उदाहरण भी देंगे, धूप में चलने से वो तो छाव में से चलो तो अच्छा है ना? परंतु उसने अभी शरीर में हूँ, राग में रहे, मैं उस रूप हूँ ये मान्यता छोड़ी नहीं है, तो अभी अनादि से हम है। हमेशा दूसरों के उदाहरण याद आते हैं। देखो ये वो कह रहे हमको कम दुख है, पर कम दुख है वो तो अगर तत्व ज्ञान का, इसलिए क्योंकि तत्व ज्ञान का अभ्यास है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से भी क्यों सुख है, क्योंकि वो राग उतना कम हुआ है। आप अपने परिणाम से टैली करके देखो, पहले जो बाहर में जितनी रुचि पड़ी थी, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ये खरीदी करो, ये करो वो करो, वो अपने परिणाम को देखो टटोलो, तो यानी परमे से वो जो वो कम हो जाती है। अभी नष्ट नहीं भी हुई होगी तो बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए एक विशिष्ट जिसको कि दृष्टि तैयार होती रहती है, अभी सम्यक हो जावे तो और ही भला है, परंतु तब तक जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। ये जो राग घट गए ना, उस टाइप का राग, अभी राग नष्ट हुआ एकत्व बुद्धि गई वो नहीं कह रहे मैं, तो उसके पहले भी इतना तो अंतर हो जाता है, उतनी शांति भी होती है। इसलिए अरविंद भाई कोई कह रहे कि अन्य मति जिसको अभ्यास भी नहीं है उनसे हम बहुत बेटर है। नहीं सुख कोई भी परिस्थिति भी क्यों ना, कोई रोग भी क्यों ना, कोई अन्य भी परिस्थिति क्यों ना, वो ऐसा है नहीं हो जाती। तत्व ज्ञान के विचार आते हैं उस समय आते हैं, और उस समय भी हाय हाय करे तो समझना कि अभी वो तत्व ज्ञान में भी कचास चल रही है। बिल्कुल होता है, और पहले में पहले उसकी याद आती है। मैं बहुत बीमारी हो जाएगी, कोई ऐसा हो जाए कि ऐसा लगता है कि अभी अंत आने वाला है, तो पहले डॉक्टर सूझेगा कि पहले तत्व ज्ञान सूझेगा, ये नक्की करो।
डॉक्टर की तरफ देखता हूँ।
देखो ही मत, हमने वही कहा।
इसको सुनने के जाते हैं ना, कभी यहाँ पे
उसमें बोलो, उसमें
आती है ना कि इसको पुण्य का उदय है, तो मेरे को ऐसे लगता है यहाँ पे जाना कि नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे पुण्य का महत्व।
देखो पुण्य का उदय बात अलग है।
नहीं पर वो वहाँ पे क्या होता है कि नहीं, देखो उनको इतना पुण्य का उदय, उनका इतना सुखरूप परिक्रमण हो रहा है, तो ये धर्म से हो रहा है, तो इसे वहाँ पे जाना
है। आप नक्की करो आपको कहाँ जाना है, हम नहीं कहेंगे आपको। नहीं, आपको जहाँ सही लगता है।
पर मैं नहीं जाता हूँ तो ये लोग सब लोग मेरे को ऐसे बताते हैं कि आप नहीं आते, आप बहुत कुछ छूट रहा है आपसे।
देखो एक बार अभी सही पकड़ में आ जाए, अभी गुरुदेव के वाणी में तो कितनी बातें सहज हो रही
है। इनका क्या कहने में,
उनका ये बात है कि वो नहीं जाते पर उनके घर वाले जाते हैं।
कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं?
अन्य दूसरों को सुनने के लिए।
अच्छा,
और वहाँ ऐसी बातें बताई जाती कि ये आपको कैसे मालूम वहाँ क्या बताते हैं।
जो जिसको अनुभव नहीं है वो व्याख्या देते हैं ना, तो भी मेरे को अच्छा नहीं लगता।
अभी वो जाने दो। हाँ, मगर देखो देखो ये बात है कि जहाँ पुण्य की महिमा हो रही है वो तो बात ठीक है ही नहीं है। हाँ? क्योंकि पुण्य की महिमा है, वो पुण्य के उदय में वो उसकी महिमा आ रही है, तो पुण्य बंध को अच्छा माना, तो तो जिसने पुण्य बंद को अच्छा माना उसने तो सातों तत्वों संबंधी गलती गड़बड़ी है। आपको जहाँ नहीं सुहाता है वहाँ नहीं जाना, आप स्वयं अभ्यास करो। मगर वो छोड़कर अभी आपको सही जहाँ मिल रहा है उसके डटकर उसका विचार करना है, उस पर और गौर से उसको पढ़ना चाहिए। और एक बार सत्य बात अगर उपदेश मिला है और उसको अगर आप पकड़ लिया है, अभी दौड़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी बाकी क्या हो रही है, जो बताया है वो अंतरंग में अवलोकन करना, जिसको कहेंगे स्थिर रहना है, वो नहीं हो रहा है। परंतु उसके बदले हम इधर दौड़ो, उधर दौड़ो, उधर दौड़ो, उतने काल में हम अगर स्थिरता का, अभी आज अच्छा हुआ आप 15 मिनट लेट आए, हमारा अच्छा ध्यान हो गया, हम बैठे हैं यहाँ पर, अभी तो समय मिल गया फुर्सत से, ना अंदर दौड़ा दौड़ी करनी है ना कहीं करनी है। हाँ इसमें तो आगे है, पता है क्या करें।
आज हम 8:15 बजे तैयार हुए थे,
आज बहुत जल्दी तैयार हुए थे, नहीं तो कभी के रोज हमारी भी दौड़ा दौड़ी चलती है, आके बैठे यहाँ सब तैयारी कर दी, आप भी ध्यान करो उधर हम भी बैठते हैं यहाँ पर। भेद ज्ञान की बात है, देखो देखो विकल्प की बात नहीं उठा।
देखो अभी आप संकल्प करेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे ज्ञान का गेय है, मैं ज्ञाता हूँ, ये जो मैं ज्ञाता हूँ ऐसा जो विचार आ रहा है वह भी मेरे ज्ञान का गेय है, मतलब इतने अंदर तक तो
नहीं। मगर फिर भी विकल्प आ रहा है वो ज्ञान का गेय है, वो भी अभी विकल्प का लक्ष्य हो रहा है।
हाँ
अभी अभी भले वो विकल्प का लक्ष्य हो रहा है, विकल्प आ रहा है, परंतु विकल्प है वो अनुभव नहीं है। तो विकल्प उठाने की कोशिश मत करना। हम क्या कर रहे हैं ध्यान के नाम पर, और नए विकल्प और नए विकल्प, वो कहते हैं जरा शांत हो जाओ।
यानी देखो अभी ऐसा होता है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानन देखन स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, ये सारे विकल्प ही है ना।
वही तो, उस भाषा को छोड़ो ना अभी, शांत हो जाओ ना, कुछ मत उठाओ, उतनी तो प्रैक्टिस करो, कुछ मत उठाने की प्रैक्टिस करो मैं कहूंगी।
पर कुछ तो आएगा ही ना।
अरे आने दो ना, उसमें क्या, हम क्या आता है उसके बाद क्यों, जो विकल्प को जानने वाला उसी समय वहाँ हाजिर है कि नहीं है। महत्ता की भी बात नहीं, अभी वो शांत हो जाओ, थोड़ा स्थिर हो जाए। बाकी लौकिक में तो वो आप दही जमाते हो ना, तो क्या वो करते रहते हो, अरे उसको छोड़ दिया ना। तो जो आपने सब जान लिया है, विकल्पों में जान लिया है, ज्ञाता बात सब जान लिए, अभी अभी समझो पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छी बात अभी है, गुरुदेव की बात आती है तो इतना अंदर से फील, शांत हो जाओ, आंखें बंद करके बैठ जाओ।
लेकिन शांत हो जाओ यानी क्या, यही समझ में नहीं आता है।
करके तो देखो ना एक बार,
नहीं, करके देखो,
भले फिर विकल्प आएंगे कोई बात नहीं है, विकल्प होते होते भी अंतरंग की महिमा वाले विकल्प आएंगे, फिर वो भी छूट, जैसे भी प्रवचन सार में वो तो ज्ञान की अपेक्षा है। देखो श्रद्धा की बात पकड़ में नहीं आएगी, श्रद्धा की पर्याय होगी जरूर, पर वो पकड़ में आएगी तो ज्ञान की ही पर्याय आएगी। जैसे हम कहें ये ज्ञाता है, ये विकल्प भी हमारे ख्याल में आ रहे हैं, विकल्प इटसेल्फ सविकल्प ज्ञान है, वो तो ज्ञान रूप ही है। तो अभी जो अनुभव की प्रवचन सार का अभी जो ज्ञान अधिकार चल रहा है वही है। कौन से विकल्प, अरे मैं तो ज्ञाता हूँ, और एट ए टाइम ज्ञानमय होने के कारण स्व को भी जानना और पर का जानना एट ए टाइम हो रहा है उसमें। तो जो कुछ जानने में आ रहा है वही तो मैं हूँ, पर हमारा जोर कहाँ पड़ रहा है, विकल्पों पर पड़ रहा है। विकल्प जानने में नहीं आएगा ऐसा नहीं, वो आता है ना तो जड़ हो जाएगा विचार से, निर्विचार होना उसका अर्थ निर्विकल्प होना नहीं है। ये पंडितोरल में जिस आपने लिखा है आपको तो मालूम है। तो यानी वो जानने में वो ज्ञानमय है, इस तरह से ज्ञान की मुख्यता से उस पर हमें उस पर जोर आना चाहिए। अभी करना बिरना की बात ही नहीं ना, होता है तो सहज होता है, फिर भी विकल्प आएंगे जरूर, पर विकल्प है या विकल्प उठाते रहने की जरूरत नहीं है। मैं ज्ञाता हूँ ये तो हम पढ़ाते समय कहेंगे, उस पर जोर भी देंगे, बोलेंगे भी, परंतु अभी ध्यान के नाम पर भी जल्प रूप चल रहा है। जैसे कोई आप इसको जानते रहो क्या हो रहा है, उसका कलर आपको ज्ञान में आ रहा है, तो यहाँ पर ये ग्रीन है या ऐसा है, ये चौकोनी है, ऐसा मन ही मन में पुटपटाते हो क्या, जो है वो जानने में आ रहा है। इस तरह से ज्ञान को पकड़ने की कोशिश करना है, वो हम ज्ञान को पकड़ते नहीं, वो विकल्पों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो गया समय,
ध्यान करने का समय हो गया।
ध्यान करने का समय हो गया। चलो ये जगन्य से शुरुआत से ले लेंगे हम, कल सातवां नंबर होगा। अभी जगन्य का प्रकरण है ना, वहां से शुरुआत से ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन